खत्म होने से पहले। आज ही खरीदें न्यू HP ऑफिस जेट प्रो प्रिंटर और सब्सक्राइब करें HP इंस्टेंट इंक स्टार्टिंग एट $399 a month। विजिट hp.ca या अपने नजदीकी HP रिटेलर।
डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नु मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहनगे।
SNS लॉयर्स को इन्हां सारे सवालां दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानने ले या सलाह लेन ले आज ही SNS लॉयर्स नु कॉल करो 416-655-2000।
सेल 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 विनायक फर्नीचर मिसिसागा लोकेशन कहाँ 2915 अर्जेंटिया रोड इन मिसिसागा वेस्टर्न चर्च अर्जेंटिया मेजर इंटरसेक्शन। अपनी कम्युनिटी का 15 साल पुराना स्टोर जहाँ पर बेडरूम सेट मिलता है $499, कॉफी टेबल $199, मैट्रेस $99 ओनली। फर्नीचर से रिलेटेड कोई जरूरत हो पहुँचिए 2915 अर्जेंटिया रोड इन मिसिसागा। फोन नंबर 905-858-2667।
The biggest cricket event has begun. Yes, ICC Cricket World Cup 2019 आपके लिए लेकर आए हैं क्रिकेट का सबसे बड़ा शो नॉर्थ अमेरिका में। हम आपको देंगे लेटेस्ट न्यूज, इनसाइड एंड आउटसाइड अपडेट, मैच एनालिसिस, टीम एंड प्लेयर स्टैट्स, ट्रिविया क्वेश्चन, सरप्राइज इंटरव्यू एंड एक्साइटिंग प्राइजेस। देखिए मैच पॉइंट रोजाना रात 9 बजे डॉक्टर अदनान के साथ सिर्फ ई आवाज टीवी पर, फेसबुक ई आवाज या फिर eawaz.com।
खाने का इंतजाम तो बहुत ही जबरदस्त है और मेन्यू भी कमाल का है, बनाया भी कितना लजीज है।
ये सब कमाल है किराना हट का। दावत हो तो केटरिंग बहुत खूब करते हैं, और अगर वैसे बाहर खाना खाने को दिल चाहे तो समझो हर उम्र की पसंद किराना हट पर मौजूद। और हाँ, एक और बात, इस खाने के बाद गारंटीड नो हार्ट बर्न।
किराना हट का मुझे भी नंबर दें, हमारे यहाँ कोई ना कोई मेहमान आता ही रहता है।
किराना हट मिसिसागा में बस कॉल कर लीजिए 9054058383
जी साहब करा, वेलकम बैक टू रेडियो साजो आवाज़। 5:12 हमारी घड़ियों में हो चुके हैं, और साहब अब लिए चलूँगा मैं आपको अंजुम कुरैशी की जाने पर। अंजुम कुरैशी से सुनते हैं, अगर आपका खुदा खासा कोई कार एक्सीडेंट हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, समा फरमाइए। छोटी बड़ी चीज़ों में ऐसा हो ही जाता है साहब। चलिए साहब एक दफ़ा और कोशिश करते हैं। अंजुम कुरैशी
एक बात कहूँ दिलदारा तेरे इश्क ने हमको मारा, एक बात कहूँ दिलदारा तेरे इश्क ने हमको मारा। तू दूर है मैं एक तारा तेरे इश्क ने हमको मारा, एक बात कहूँ दिलदारा तेरे इश्क ने हमको मारा। फूलों ने किए हैं सजदे तू जब चमन में आया, फूलों ने किए हैं सजदे तू जब चमन में आया, फुर्सत में बैठ कर थे सबने तुझे बनाया। तू हुस्न का वो शहबाज़ तेरे इश्क ने हमको मारा, एक बात कहूँ दिलदारा तेरे इश्क ने हमको मारा। हाँ। तेरी मस्त मस्त आंखों को कैसे कह लो पैमाना। तेरी मस्त मस्त आंखों को कैसे पैमाना। तेरी चाल पया मत लाए तेरी ठोकर में मैं पाना। क्या रूप है क्या नजारा तेरे इश्क ने हमको माना। एक बात कहूँ दिलदारा तेरे इश्क ने हमको मारा। पूछूंगा खुदा से जाकर वो हुस्न दिया क्यों तुझको। पूछूंगा खुदा से जाकर वो हुस्न दिया क्यों तुझको। मेरी तौबा जिससे टूटे काफिर जो बना दे मुझको। बल्ला हद सबसे प्यार तेरे इश्क ने हमको माना। बात कहूँ दिल धारा तेरे इश्क ने हमको मारा। सुर है मैं एक तारा तेरे इश्क ने हमको मारा। एक बात कहूँ दिल धारा तेरे इश्क ने हमको मारा। एक बात कहूँ दिल
जी साहब, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने समाप्त फरमाया। और लीजिए साहब, अब लिए चलते हैं हम आपको मोहतरमा अंजुम कुरैशी की जानेब। एंड खुदा खास्ता आपका कभी एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, तो भाई आप किससे कांटेक्ट करें? अंजुम कुरैशी जी से। एंड देखिए क्या पैगाम देती हैं।
आदाब नमस्ते और सत श्री अकाल। जैसे कि आपको हमेशा ही मालूम है कि हमारा काम है कि आपको एक ऐसी अवेयरनेस देना जिसमें आपको ये पता हो कि अगर कार एक्सीडेंट हो जाता है तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जो आप उसको बर्दाश्त ना कर सकें या आप उसको हैंडल ना कर सकें। आप बिल्कुल हैंडल कर सकते हैं अगर आपको अवेयरनेस होगी, आपको पता होगा कि आपको क्या करना चाहिए। और हमारा मशवरा आपको ये होता है कि किसी भी कार एक्सीडेंट की सूरत में सबसे बेहतरीन मशवरा आपको एक लॉयर दे सकता है। और हमारे पास टीम ऑफ लॉयर मौजूद हैं जो आपके पर्सनल इंजरी को क्लेम करते हैं और अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। आपने याद रखना है 416-570-0157। और चलते चलते आपको ये भी बताते चलें कि अगर आपका पुराना एक्सीडेंट है, आपका नया एक्सीडेंट है, अब तक आपको पता नहीं था कि क्या करना चाहिए और इस प्रोग्राम के थ्रू आपने ये सारी बातें हमसे सुनी और अगर आप चाहते हैं तो एक सर्टन टाइम आपके पास होता है और आप बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं। और सपोज अगर इंश्योरेंस कंपनी से अभी तक आपने कॉन्टैक्ट नहीं किया है, अभी तक आपने स्टेटमेंट नहीं दी है, तो लॉयर आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकता है कि जब एक लॉयर इंश्योरेंस कंपनी से बात करता है तो टोटल डिफरेंट सुनहरी होता है, जब आप बात करते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट सुनहरी होता है। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को पता होता है कि जब एक लॉयर डील करता है तो उसको किस तरीके से डील करना है। बस इतनी बात आपको याद रखनी है कि कानूनदान ही कानून को ज़्यादा बेहतर समझ सकता है। 416-570-0157। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।
ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ ਥੋੜੀ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਜੱਚਦਾ।
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮਤ ਹੋਇਗਾ, ਡਾਕਟਰ कुरैशी अब दो क्लिनिक से आपको सर्विस देते हैं, किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं है। तमाम डेंटल ट्रीटमेंट अंडर वन रूफ, रूट केनाल, ऑर्थोडॉन्टिक्स ट्रीटमेंट है, ब्रेसिस है, सर्जिकल एक्सट्रैक्शन है, तो बस सिर्फ एक ही नाम, डॉक्टर फयाज कुरैशी, मिसेस सागर और स्कारब्रो। आप अपनी मर्जी से अपॉइंटमेंट बनाइए। खवातीन के लिए पर्दे का खास इंतजाम और फीमेल डेंटिस्ट। 9052325678 2325678। डॉक्टर फयाज कुरैशी।
शाहजी रेक्सडेल हुंदे पे लेनी हो सोनाटा एलेंट्रा या फिर 300 सेंटारा पे, जल्दी से शाह अहमद को अभी फोन मिला लो रे, क्योंकि शाहजी अब रेक्सडेल हुंडे पे।
कारों के जादूगर शाह अहमद अब रेक्सडेल हुंडे पर हैं और शाहजी से बेटर प्राइस और सर्विस आपको कहीं नहीं मिलेगी। कॉल करो 416-817-2720,
क्योंकि शाहजी रेक्सडेल हुंडे पे।
दाल मिर्चों का सालन राजमा लाहौरी छोले शामी और रेशमी कबाब पूरी भाजी दाल पूरी
कर दूं मैं। हाँ जी हाँ हाँ अब सही है। शिफोन ब्राइडल कटोर आप अपॉइंटमेंट ओनली, लेटेस्ट फैशन पाकिस्तान के कपड़ों के आपको चाहिए ख्वातीन के कपड़े तो भाई आप शिफोन ब्राइडल कटोर पर तशरीफ लाएं, मगर बाय अपॉइंटमेंट जैसे मैंने आपसे कहा असमा जी से आप पहले अपॉइंटमेंट ले लें, उसके बाद ही आप जाके इनसे बात कर सकते हैं। इनका कलेक्शन देखिए आपने, नॉट ओनली कपड़ों का कलेक्शन बल्कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी का भी बड़ा अच्छा मैचिंग कलेक्शन इनके पास मौजूद है। तो शिफोन ब्राइडल कठोर की असमा जी से कॉन्टैक्ट करें 647-866-4274 इनका फ़ोन नंबर है। और क्या बात करेंगे साहब, एलीट कैनेडियन एकेडमी सिलोन की बात करते चलो। एलीट एकेडमी सिलोन एंड स्पा ये कहते हैं कि यहाँ पर एक तो आपको हर तरह के मेकअप फैसिलिटी है, ऑल काइंड ऑफ फेशियल्स हैं, ब्राइडल पार्टी मेकअप है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रा फेशियल, ये तो खातून ही बताएंगी आपको क्या चीज़ है, मगर ये भी मौजूद है यहाँ पर। और फिर सर्टिफिकेट्स, अगर आपने सीखना भी है काम, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने सर्टिफिकेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ कॉस्मेटोलॉजी, हेयर डिज़ाइनिंग सर्टिफिकेशन इन न्यूट्रिशन एंड डाइट, मेकअप कोर्सेज यहाँ पर मौजूद हैं, बेसिक कोर्सेज भी मौजूद हैं, सलोन मैनेजमेंट भी मिलेगा आपको, प्लानिंग ऑफ मेकअप आर्टिस्ट किस तरह बन सकती हैं आप, मेहंदी का अगर आपने लगाने का शौक़ है तो वो भी आप जाके यहाँ सीख सकते हैं। तो गर्ज के हर किस्म का मेकअप, और उसके साथ साथ अगर आपने सर्टिफिकेट लेना हो और अपना काम खुद ही शुरू करना हो तो भी आप एलीट कैनेडियन अकेडमी सलोन एंड स्पा के पास पहुँच जाइए। आजकल जो उन्होंने रखा भाई फेशियल जो है $40 का स्पेशल रखा है उन्होंने, आपने जाना कहां पर है, 2901 मार्कम रोड यूनिट नंबर 2 इन स्कारबेरिया स्कारब्रो में 2901 मार्कम रोड, भाई आप एक दफ़ा वहाँ जाके इनसे मालूमात कर लें। 647-761-0508 एलीट कैनेडियन एकेडमी सलोन एंड स्पा का फ़ोन नंबर है, 647-761-0508 इनका फ़ोन नंबर है। चलिए साहब इन्हीं लोगों के तावुन से और एक और खूबसूरत गीत की जानने के लिए चलता हूँ आपको मैं, और होपफुली यू एंजॉय ऑल दीज सॉन्ग्स दैट वी आर प्लेइंग। हैप्पी कैनरी टू एवरीबॉडी एंड एक खूबसूरत गीत आबिदा परवीन एंड आतिफ असलम की आवाज़ में, तेरे इश्क नचाया समा फरमाइए।
ओ तेरे इश्क नचाया, ओ तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, चीती आमी में तदीबा, चीती बॉडी में तदीबा, नहीं तो मर मर गया चीती, ओ चीती आमी में, ओ चीती बॉडी में तदीबा, नहीं तो मर मर गया। तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, चीती आमी में तदीबा, छेती बॉडी में तभी का नहीं का मैं मर गया चेती, ओ छेती आमी में तभी का नहीं का मैं मर गया।
ना मैं मोमन बेच मसीदा, ना मैं बेच कुफर दिया रीता, ना मैं पाका बेच बली, ना मैं मूसा ना फिरौन, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, छेती आमी में तभीबा, छेती बॉडी में तभीबा, नहीं का मैं मर गया चेती, ओ छेती आमी बे। नचाया, तेरे इश्क नचाया करके तैयार
को हमने जा बजा देखा यार को, यार को हमने जाओ बजा देखा, हो जा बजा देखा, देखा मौला अली देखा, मौला अली देखा, ओ मौला अली देखा, मौला अली देखा, ओ मैंने मौला देखा, मौला अली देखा, अली 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 इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया
मस्जिद ढादे मंदिर ढादे ढादे जो कुछ ढहंदा, मस्जिद ढादे मंदिर ढादे 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 मंदिर ढादे ढादे पर किसे दा दिल ना धामी रब बछाने ना कोई सानू मने ना कोई साड़ी जात बछाने ना कोई सानू मने
ਡਾਕਟਰ
Dr. Padmaja. Family in cosmetic dentistry, experienced and caring dentist Dr. Padmaja. दांत निकलवाना हो, crown hemorrhages हैं, filling या फिर root canal, तमाम insurance plans को accept करती हैं. आसान weekend या फिर शाम की appointment. Seniors के लिए discount. Get the smile you have always dreamed of. In Scarborough, Dr. Padmaja. 416-299-7466. 299-7466. Dr. Padmaja, your dentist. कहते हैं कि माया को खींचे माया कर कर लंबे हाथ. हैरी सॉन द मेजेस्टिक मॉर्गेजेस के साथ रेजिडेंशियल कमर्शियल मॉर्गेज रीफाइनेंसिंग आपने करनी है, किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है, सारे बैंकर्स और लेंडर्स के साथ डीप ताल्लुक आता है इनके. आपको फाइनेंसिंग का बंदोबस्त भी हो जाएगा और चार्जेस भी कोई नहीं देने पड़ेंगे. हैरी सॉन जी बड़ी कमाल की तिकड़म लड़ा सकते हैं. बस आप कॉल कर लीजिए और पैसे का अरेंज हो जाएगा. $228 से $1,000 महीना कैसे बचा सकते हैं? कॉल हैरी सॉन नाउ 6472281000 Harry Sond of Majestic Mortgages. जी साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम खैरियत से होंगे. प्रोग्राम में आप तमाम को खुश आमदेद. कोई है तो है, कोई नहीं मतलब, मगर आपकी मौजूदगी होना कैन मेक अ डिफरेंस. मैं एक्चुअली ड्राइव कर रही थी तो सारी की सारी सड़कें खाली थी. मैंने कहा यार लग सारा का सारा टोरंटो कहीं चला गया. अब जहाँ भी चले जाएँ आप हमारी ऐप ई आवाज़ ऑफिशियल को डाउनलोड कर लें, मगर भाई रेडियो पर हमें साथ तो रखें ना आप. और अब हम आपकी कॉल्स भी लेके देखना चाहेंगे कितने लोग हमारे साथ हैं और कितने लोग हमारे साथ नहीं. प्रोग्राम में आप तमाम को खुश आमदीद. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. साज़ो आवाज़ आपका अपना चैनल 770 आपका चैनल, ये आपकी आवाज़. और खबरें होती हैं, बातचीत होती है, आपकी कॉल्स को एयर पे किया जाता है. पाकिस्तान से मंडे को शिविंदर हमारे साथ हुआ करते होते हैं और ट्यूसडे मंडे एंड वेनसडे को शिविंदर हमारे साथ होते हैं. ट्यूसडे एंड थर्सडे को जनाब खावर नईम हाशमी हमारे साथ यहाँ मौजूद होते हैं. आज तो वैसे भी लॉन्ग वीकेंड है, लगता है पूरा का पूरा टोरंटो निकल के कहीं और ही चला गया. देखिए वापस आ जाइए वापस आ जाइए से मुझे एक इस चीज़ आपके साथ शेयर करनी है. तलाश गुमशुदा आपने भी सुना होगा, तो एक तलाश गुमशुदा है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है. साहब मैंने और आपने खलूस और इखलास का नाम बहुत सुना हुआ है, खलूस का और इखलास का नाम. तलाश गुमशुदा में आज ये हर तरफ सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है कि हमसे खलूस गुम हो गया है. इसकी उम्र कई सौ साल है, बुढ़ापे की वजह से खलूस काफ़ी कमज़ोर है. घर में मौजूद था, खुदगर्जी के साथ अनबन होने की बिना पर नाराज़ होकर खलूस घर से गायब हो गया. इसके बारे में गुमान है कि इंसानों के जंगल ने उसे निगल लिया. इसका छोटा लाडला भाई अखुवत इसका भाई है और बहन हुबुलवतनी सख्त परेशान है. इसके दोस्त मोहब्बत और मेहरबानी भी इसकी तलाश में निकले हुए हैं और इसकी अदम मौजूदगी में इसके दुश्मन शरपसंद ने तासुब और हवस के साथ मिलकर तबाही मचा रखी है. इसकी जुड़वा बहन शराफत का इसके फराक से इंतकाल हो चुका है, यानी शराफत भी मर गई. शराफत के गम में हया भी चल बसी. इसका बड़ा भाई इंसाफ इसकी जुदाई में रो रो कर अंधा हो गया है. इसके वालिद मोहतरम मुआशरा को सख्त फिक्र लाहक है. इसकी वालदा इंसानियत शदीद बीमारी का शिकार है. आखिरी बार अगर अपने जिगर गोशा खलूस को देखना चाहती है, जिससे भी खलूस मिले वो इंसानों के पास पहुंचा दे, वरना इंसानियत दम तोड़ देगी. अगर ये खुद भी पढ़े तो बराह करम वापस आ जाए, इसे कुछ नहीं कहा जाएगा. क्या खूब है. मैंने कहा लिखने वाले तो वहाँ वहाँ के लिख के लेके आते हैं जहाँ हम सोच भी नहीं सकते. यानी खलूस गुम हो गया है और खलूस की गम में उसकी बहन जो जुड़वा बहन है शराफत, उसका इंतकाल हो चुका है और शराफत के गम में हया भी मर गई हुई है. इंसाफ जो है वो अंधा हो गया है. मुआशरे को सख्त फिक्र लाहक है. इंसानियत उनकी वालदा कहा गया, वो शदीद बीमार है. खलूस जहाँ कहीं भी इसको सुने वापस आ जाए. जी साहब खलूस और इखलास की मैं भी बात करती हूँ. हर मुआशरा अच्छा होता है. आज से 25-30 साल पहले भी कुछ इसी तरह की शुनीद हुआ करती होती थी, बल्कि मेरी कोशिश होगी कि आज मैं माजिद भाई से कहूँ कि फैज़ अहमद फैज़ का वो कलाम आपके साथ ज़रूर शेयर करें. यानी 77 के दरमियान जो सूरत हाल थी आपको याद होगा, उसी दौरान शदीद मार्शल लॉ का भी शिकार था पाकिस्तान. जब हमारे ज़ियाउल हक साहब तशरीफ लाए थे उनके दौर में ख़ास तौर पे, और तब भी
جو مظالم ڈھائے جا رہے تھے ان رائٹرز کے اوپر, اور فیض احمد فیض نے برملا اس کا اظہار بھی کیا, بہت کچھ لکھا بھی اس پہ ایوب خان کے دور میں بھی. بائی دا وے, میں جب آپ کے ساتھ یہ نیوز شیئر کر رہی ہوں تو میں ایک بڑی دکھ کے ساتھ خبر شیئر کرنا چاہتی ہوں. پاکستان میں اس وقت سینسرشپ کا عالم آپ دیکھیے گا, اور میں وہی بات کہتی ہوں کہ آپ کانفیڈنس میں رہتے ہوئے صحافیوں کو لے کے چل سکتے ہیں. آج کی ایک جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں, کہتے ہیں کہ پاکستان کے ایک ٹیلی ویژن پہ سابق صدر پاکستان آصف زرداری صاحب کا انٹرویو تھا. انٹرویو آن ایئر ہو گیا. جب انٹرویو آن ایئر ہوا تو اداروں نے مداخلت کر کے اس انٹرویو کو رکوا دیا. پروگرام کو ہوسٹ کرے تھے جناب حامد میر, اینڈ یو نو حامد میر کے دل میں بھی بہت ساری راز ہیں. انہوں نے کہا کہ حامد میر نے کہا کہ جن لوگوں نے یہ انٹرویو رکوایا ہے ان کی اتنی ہمت نہیں کہ کھلے عام تسلیم کرے کہ انہوں نے یہ انٹرویو, یعنی آصف رضا میر صاحب کے ساتھ انٹرویو رکوایا. بائی دا وے, یہ جس جگہ پہ آصف رضا میر جس جگہ پہ آصف زرداری صاحب تھے وہاں صرف جو ہمارا نیشنل ٹیلی ویژن ہے اس کو جانے کی اجازت ہے, مگر ان لوگوں نے آصف رضا میر حامد میر نے جو انٹرویو ریکارڈ کیا تھا یہ ایک سیل فون کے تھرو انہوں نے یہ ویڈیو بنائی تھی. آصف زرداری کی نیب حراست میں پروڈکشن آرڈر جاری ہونے کے بعد پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطہ میں سلیم مانڈی والا کے چیمبر میں موبائل فون پر یہ انٹرویو ریکارڈ کیا گیا تھا. گزشتہ حکومت میں قومی سپیکر اسمبلی کے جاری احکامات کے مطابق ماں سوائے سرکاری ٹیلی ویژن پاکستان ٹیلی ویژن کے کوئی نجی ٹیلی ویژن کیمرہ قومی اسمبلی کی عمارت کے اندر لے جانے کی اجازت نہیں. تو قومی اسمبلی کی عمارت میں کیمرہ تو نہیں جا سکا, مگر ان لوگوں کے پاس ان کے سیل فونز تھے, اور سلیم مانڈی والا کے کمرے میں جا کے انہوں نے سیل فون پہ یہ انٹرویو ریکارڈ کیا. حامد میر کا یہ پروگرام جو تھا پاکستان کے وقت کے مطابق رات 8 بجے نشر ہونا شروع ہوا, لیکن انٹرویو کے چلنے کے کچھ ہی دیر کے بعد پروگرام روک دیا گیا, اور جی نیوز کی سکرین پر ٹکرز کے ذریعے باضابطہ طور پر آگاہ کیا گیا کہ آصف زرداری صاحب کا یہ خصوصی انٹرویو ہم نشر نہیں کر سکیں گے. پروگرام کے میزبان حامد میر نے اپنے ناظرین سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ اپنے ناظرین سے معذرت خواہ ہوں کہ یہ انٹرویو نشر ہونا روک دیا گیا, اس حوالے سے تفصیلات سے میں جلد آگاہ کروں گا, لیکن یہ سمجھنا بہت آسان ہے کہ یہ انٹرویو کس نے روکا, ہم ایک آزاد ملک میں نہیں رہتے. انہوں نے کہا کہ اس انٹرویو کو رکوایا گیا اور یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ ہم ایک آزاد ملک میں نہیں رہتے. یہ بیان حامد میر صاحب کا ہے. انہوں نے بلکہ جو ٹویٹ کیا میں وہ بھی شیئر کرتی ہوں. جیو نیوز اناؤنس دا انٹرویو آف آصف زرداری ول ناٹ بی ایئرڈ, اٹ واز اسٹارٹڈ 8:03 اینڈ اسٹاپڈ ود ان اے فیو منٹس. آئی ایم گیٹنگ کالز فرام آل اوور دا ورلڈ, پیپل آسکنگ واٹ ہیپن, اسٹیٹ آف پاکستان گیونگ بیڈ نیم ٹو اٹس کنٹری, وی ڈو ناٹ نیڈ اینیمیز. آپ دیکھیے لاسٹ لائن پہ غور کیجئے گا. حالانکہ پچھلے کچھ عرصے کے بیچ میں عمران خان جب ٹریول کیے تو حامد میر نے ان کے ساتھ ٹریول بھی کیا. حامد میر ان کے مجھے لگتا تھا بہت قریب ہیں, مگر یہ اسٹیٹمنٹ از اٹس آن دا ٹویٹر دو کہ انٹرویو اسٹارٹڈ ایٹ 8:03 اسٹاپ ود ان فیو منٹس, آئی ایم گیٹنگ کالز فرام آل اوور دا ورلڈ, پیپل آسکنگ واٹ ہیپن, اسٹیٹ آف پاکستان گیونگ بیڈ نیم ٹو اٹس کنٹری, وی ڈو ناٹ نیڈ اینیمیز. پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو, انہوں نے یہ انٹرویو کے روکے جانے پر سلیکٹڈ حکومت سلیکٹڈ آوازیں سننا چاہتی ہے کا ٹویٹ کیا. آصف زرداری کے انٹرویو کو سینسر کر دیا گیا, اس انٹرویو کو آن ایئر ہونے کے بعد روکا گیا. بلاول بھٹو نے کہا کہ ضیاء مشرف اور نئے پاکستان میں کوئی فرق نہیں, یہ پاکستان وہ ملک نہیں جس کا قائد اعظم نے وعدہ کیا تھا. The one he tweeted is, I'll share selected government only wants to hear selected voices. President Zardari's interviews with Hamid Mir Pak censored, pulled from the air when it was already started. No difference in Ziaab's Pakistan, Musharraf's Pakistan and Naya Pakistan. This is no longer a free country, what Qaid promised. Ye unhone kiya. بلاول زرداری نے ٹویٹ کیا. صاحب بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جس وقت آصف زرداری کا انٹرویو روکا گیا, این اسی وقت نجی ٹیلی ویژن نجی نیوز چینل اے آر وائی پر وزیر اعظم عمران خان کا 2 گھنٹوں پر محیط انٹرویو نشر کیا جا رہا تھا. یعنی اے آر وائی
پرائم منسٹر آف پاکستان کے انٹرویو کو نشر کر رہا تھا. جیو جو تھا یہ ان سائٹ جا کے جو انہوں نے سیل فون پہ انٹرویو ریکارڈ کیا تھا انہوں نے وہ نشر کرنا شروع کیا تھا. حامد میر کی کیپیٹل ٹاک میں دیے جانے والے انٹرویو کا جو پرومو جاری کیا گیا تھا اس میں آصف زرداری کا کہنا تھا کہ لندن میں ایک تفتیش چل رہی ہے جس میں وزیر اعظم عمران خان اور ان کے سلیکٹ کرنے والوں کو بہت بڑا اسکینڈل سامنے آنے والا ہے. یعنی انہوں نے یہ تو اتنا سا بتا دیا کہ لندن میں تفتیش چل رہی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور ان کے سلیکٹ کرنے والوں کو بہت بڑا اسکینڈل سامنے آنے والا ہے. یہ پروگرام نشر نہ ہونے کی وجہ سے اسکینڈل کے بارے میں مزید معلومات سامنے نہ آ پائیں. انٹرویو کے جانے پر سوشل میڈیا میں ایک نئی بحث کا بھی آغاز ہو گیا اور صحافی روف کلاسٹا نے ٹویٹ کی کسی بھی ملزم کو جو منی لانڈرنگ جعلی اکاؤنٹس اور دھوکہ دہی کے کیس میں ملوث ہو اسے موقع دیا جائے کہ وہ ایک گھنٹے تک ٹیلی ویژن پر اپنی صفائی بیان کر سکے. ایسا صرف پاکستان میں ہوتا ہے کہ نیب کی حراست میں موجود شخص ٹی وی پر آ کر جمہوریت اور شفافیت پر لیکچر دیتا ہے. واٹ آصف کلاسٹا سیڈ ٹویٹ کیا انہوں نے اور نو ڈفرنس پلس بٹ نو ویئر آر ٹاپ ایکیوزڈ منی لانڈرنگ فراڈز اینڈ فیک اکاؤنٹس از الاؤڈ ون آور ایئر ٹائم ٹو جسٹیفائی ہز کرائم. اٹ اونلی ہیپنز ان پاکستان ویئر این ایکیوز ان کسٹڈی آف نیب آن اے فزیکل ریمانڈ اپیئرز آن دا ٹیلی ویژن ٹو گیو اس لیکچرز آن ڈیموکریسی اینڈ ٹرانسپیرنسی. حامد میر نے جواب دیا کہ جیو نیوز اناؤنس دا انٹرویو آف آصف زرداری ول ناٹ بی ایئرڈ, اٹ واز اسٹارٹڈ 8:03 اینڈ اسٹاپڈ. یہ یعنی آصف حامد میر کے ٹویٹ کے جواب میں جناب کلاسرا صاحب نے ٹویٹ دیا کہ ایک شخص جو منی لانڈرنگ کے کیس میں ہے وہ کیسے انٹرویو دے سکتا ہے مگر پاکستان کے ٹیلی ویژن زندہ باد, دے کین ڈو اینی تھنگ. یعنی جب حامد میر نے یہ لفظ کہا کہ یہ ملک آزاد نہیں تو روف کلاسٹا نے کہا کہ سب حکمران اقتدار ملتے فرعون بن جاتے ہیں. جب زرداری صدر تھا اس نے اپنی وزیر شیری رحمان کو کہا کہ جیو ٹی وی اور دیگر میڈیا کو ٹائٹ کرو. انکار پر شیری کو وزارت عثمت چھوڑنا پڑی. اسی طرح جب زرداری کے درباریوں نے آئی بی خفیہ فنڈ سے 40 کروڑ نکال کر صحافی خریدنے کا پروجیکٹ لانچ کیا. یہاں بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا کوئی شخص پروڈکشن آرڈر پر ہو کر میڈیا کو انٹرویو دے سکتا ہے یا نہیں. اسمبلی قواعد کے مطابق جب کوئی شخص پروڈکشن آرڈر یا پارلیمنٹ ہاؤس آتا ہے تو اس کے بعد وہ ایک ممبر پارلیمنٹ ہے جو پارلیمان کی حدود میں آزاد شہری شمار ہوتا ہے. اس پر نیب قوانین یا کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے کے احکامات کا اطلاق نہیں ہوتا. اب اس وقت پاکستان میں آصف زرداری صاحب کے انٹرویو پر شدید بحث ہو رہی ہے. یہ تو میں نے آپ کو پاکستان کی صورتحال بنائی, مجھے لگتا ہے پوری دنیا میں ہی. میں نے آج پہلا آپ کے ساتھ ایک پروگرام کا شیئر کیا تھا کہ اخلاص جو ہے وہ گم ہو گیا ہے. اخلاص کے غم میں شرافت چل بسی ہے اور حیات جو ہے وہ موت کے کنارے کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے, بلکہ اس کا بھی انتقال ہو گیا ہے. یقیناً اس کو میں پھر شیئر کروں گی. By the way, India lost against England اور ظاہر ہے ان کا ہوم کنٹری ہے اور انگلینڈ کی ٹیم کو ابھی تو للے پڑے ہوئے ہیں. ایک میچ اور ہے. کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک غلط ہے؟ کہا جاتا ہے کہ انگلینڈ کی آپ پتہ کیا ریومر اس وقت چل رہی ہے, انگلینڈ کی جو وکٹس ہیں ان کو بیٹنگ کے لیے سازگار کر دیا گیا ہے تاکہ انگلینڈ کو تھوڑی سپورٹ ملے اور وہ آگے. کل بھی اسکور بڑا کمال کا تھا, کراس 300 کے اسکور کو کراس کیا تھا. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ لندن میں انگلینڈ کے سیمی فائنل تک پہنچانے اور پاکستان کو ورلڈ کپ سے باہر کرنے کی ایک نیا طریقہ کار. انگلش ٹیم کو نیوزی لینڈ کے خلاف میچ کے لیے ممکنہ طور پر بیٹنگ کے لیے ایسی سازگار وکٹ فراہم کی جائے گی جہاں انگلش بلے باز آسانی سے رنز کا امبار لگا سکیں گے. تفصیلات کے مطابق پاکستان اور انگلینڈ کے سیمی فائنل تک پہنچنے کے لیے اپنے اگلے میچز میں فتح درکار ہے. دونوں ٹیموں کے پاس صرف ایک لیگ میچ باقی بچا ہے, انگلینڈ کے پاس بھی اور پاکستان کے پاس. اگر انگلینڈ نے اپنے اگلے میچ میں فتح حاصل کرتا ہے تو سیمی فائنل میں پہنچ جائے گا. تاہم اگر انگلینڈ کو شکست ہوتی ہے اور پاکستان اگلا میچ جیتتا ہے تو پھر پاکستان سیمی فائنل میں پہنچ جائے گا. اب بتایا گیا کہ انگلینڈ کو سیمی فائنل تک پہنچانے کی اس کاوش میں جو اگلا میچ ہے اس میں وکٹ اس طرح کی ہے کہ اس میں رنز کے امبار لگ سکتے ہیں تاکہ انگلینڈ کی فتح ہو.
مگر ایک بات دیکھیں نا, آپ کو میں 2 سیکنڈ کے لیے روکتا ہوں, پھر آپ کمپلیٹ کر لیجیے گا اس کا.
یہ میری خبر نہیں ہے, یہ انٹرنیشنل میڈیا کی,
جس نے بھی خبر لکھی ہے یہ,
اٹس ناٹ مائی نیوز.
جس نے بھی خبر لکھی ہے یہ کہ بھائی وہی وکٹ جو ہے دونوں ٹیموں کے لیے ہے, अगर एक टीम जो है वहां आके रन्स का अंबार लगा ले, दूसरी टीम भी तो आके वहां बैटिंग करेगी ना, तो चांस तो दोनों के लिए एक ही है। सेम थिंग इज बॉल्स, बाज दफा कहते हैं कि ये बॉल जो यूज करी जा रही है वो बाज बॉल्स बड़ी टाइट होती हैं, तो वो बॉल जो है वो आप उस पर छक्के लगा सकते हैं, मगर वही बॉल जो है वो दूसरी टीमों के लिए भी है। तो इट डजंट रियली मैटर कि कौन क्या चीज विकेट पे, यस देयर इज अ वे ऑफ डूइंग कि ये इसको बैटिंग की विकेट बना दें, इसको बॉलिंग की विकेट बना दें, मगर दे आर प्रोफेशनल्स बोथ साइड्स एंड दे आर प्रोफेशनल्स ऑन बोथ साइड्स, तो वो इसको इतनी आसानी से, वो मेरा ख्याल नहीं कि वो।
हमारी कोशिश होगी कि हम वसीउद्दीन से भी अभी मुलाकात करा सकें, उनका आंखों देखा हाल इसके बारे में शेयर कर सकें। अदनान भी हमारे साथ होंगे, जीशान यहाँ पे, आमिर यहाँ पे मौजूद हैं। आज भी हमारी लाइव प्रोडक्शन होगी जो कि हमारी वेब फेसबुक पे, हमारी वेबसाइट पे, ऐप पे, आईपी टेलीविजन पे आप इसको देख सकेंगे, और इसको पेश करेंगे 9 बजे से लेकर 10 बजे के दौरान डॉक्टर अदनान, आमिर अहमद और जीशान इसको पेश करेंगे। मतलब वी आर डूइंग टेलीविजन प्रोग्राम, व्हाई डू यू कॉल अगेन एंड अगेन। साहब, सीनियर ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज को बांग्लादेश के खिलाफ मैच से ड्रॉप किए जाने पर गौर किया जा रहा है, और ख्याल कुछ ऐसे है कि सीनियर ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज को बांग्लादेश के खिलाफ ड्रॉप करने पर गौर किया जा रहा है। मुसलसल नाकामी और गैर जिम्मेदारी मैनेजमेंट के लिए दर्द सर का बाइस बन गई है। हतमी फैसला मैच की रोजी किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान सनसनी खेज मुकाबले के बाद अफगानिस्तान को शिकस्त देने में कामयाब रहा था। टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी मोहम्मद हफीज की जगह पर सवाल उठने लगे। मोहम्मद हफीज ने सीनियर तरीन खिलाड़ी होने के बावजूद गुज़श्ता 4 मैच के दौरान मायूस कन कारकर्दगी दिखाई, पार्ट टाइम बॉलर के हाथों आउट हुए और टीम की मुश्किल में इजाफा किया। जबकि अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में जब टीम को इनकी अच्छी कारकर्दगी की जरूरत तब वो गैर जिम्मेदाराना अंदाज में आउट हो गए, जिसके बाद पाकिस्तान की टीम मुश्किल का से दोचार हुई। अब कहा यह जा रहा है कि टीम जो है मैनेजमेंट मोहम्मद हफीज को इन मायूस कारकर्दगी से शदीद नाला है। मोहम्मद हफीज की मुसलसल नाकामी और गैर जिम्मेदाराना बल्लेबाजी मैनेजमेंट के लिए दर्द सर, और हो सकता है कि बांग्लादेश के मैच के दौरान उनको बाहर बिठा दिया जाए, तहम अभी ये वाज़े नहीं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जेर इंतजाम आलमी क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम अपना नवा मैच 5 जुलाई को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान टीम नवा मैच बांग्लादेश के खिलाफ 5 जुलाई को लॉर्ड्स के मुकाम पर खेलेगी। और यहाँ पर मैं ये कहती हूँ कि इट्स सैड, सुना है कि मोहम्मद हफीज वैसे भी रिटायरमेंट के किनारे के ऊपर खड़े हुए हैं, उनकी उंगली टूटी हुई है, और उसी टूटी हुई उंगली के साथ उन्होंने,
मोहम्मद हफीज नहीं, रियाज जो है ना, उनकी उंगली टूटी हुई है।
आई थिंक मोहम्मद हफीज के साथ भी कोई मामला है। जीशान जरा, आमिर जरा, आप आगे हमें बता सकते हैं। मेरा ख्याल है कि मोहम्मद हफीज, वो कहते हैं ना, जब आप एक गेम को खुदा हाफिज कह रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात यही कोशिश होती है कि आपकी आखिरी जो मैचेस हैं वो यादगार हो जाएं और ताकि आप किताबों में रह जाएं, मगर देखते हैं कि क्या होता है। मोहम्मद हफीज का क्या उनकी उंगली में फ्रैक्चर है, मोहम्मद हफीज की उंगली में?
जी अस्सलाम वालेकुम, रेडियो साउथ आवाज सुनने की तरफ
जीशान हमारे साथ हैं।
जीशान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जी बाजी, हफीज इंजर्ड नहीं है, वहाब रियाज जो इंजर्ड थे।
वहाब रियाज, आई एम सॉरी, अच्छा वहाब रियाज, वहाब रियाज। तो मोहम्मद हफीज इज अ सीनियर मोस्ट प्लेयर, आई थिंक ही इज ऑन द वे आउट नाउ। वो वैसे भी क्रिकेट की दुनिया को खैर बात
जी, जी उन्होंने 1 साल पहले अंदेजा दे दिया था कि ये मेरा आखिरी वर्ल्ड कप होगा, और इसके साथ शुएब मलिक भी जो है इसी के साथ हैं कि ये भी मेरा आखिरी वर्ल्ड कप होगा।
उनका और किसका? शुएब मलिक।
शुएब मलिक जी।
अब शुएब मलिक भी नहीं खेले, क्या वजह है?
शुएब मलिक अगर पिछले 3 मैचों में देखा जाए, जो वर्ल्ड कप के 3 मैचेस रहे, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया के खिलाफ जो उन्होंने 0-0 और 8, तो 3 बड़े मैचों में उन्होंने सिर्फ 8 रन बनाए, तो उस बुनियाद पर जो है उसने उनको टीम से निकाला गया।
हमें कोई क्या सराही नहीं करना चाहती, ख्याल किया जाता है कि सानिया मिर्जा और शुएब, मेरा ख्याल है कि ही इज गोइंग थ्रू सर्टन अदर प्रेशर्स एज वेल इन हिज लाइफ। हैव अ सीट प्लीज। शुएब मलिक और सानिया मिर्जा इंडिया की बेहतरीन खिलाड़ी हैं और चैम्पियनशिप अपने नाम की कई बार, और सानिया मिर्जा इनका एक बच्चा भी है। अभी पिछले दिनों हमने आपके साथ एक ट्वीट भी शेयर की थी जिसमें उन्होंने अपने बेटे के साथ सिर्फ अपनी तस्वीर को शेयर किया था, और इसको जो सोशल मीडिया था उसने بڑے مختلف انداز میں لیا تھا, اور خیال کیا جاتا ہے کہ شاید ان کے درمیان کوئی سٹریس بھی چل رہی ہے یا ٹینشن بھی چل رہی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ فیملی کے لحاظ سے بعض اوقات انسان جب سیٹلڈ نہیں ہوتا تو بھی اس کا اسٹیٹ آف مائنڈ اتنی اچھی نہیں ہوتی.
بالکل بالکل. جی جی جی
جی عرفہ جی, آپ یہاں پر ذیشان یہیں بیٹھے رہے ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں, اور ہمارے ایکسپرٹ جناب وسیع الدین ہمارے ساتھ ہیں.
وسیع الدین سے آج بے انتہا باتیں کرنی ہیں. وسیع الدین السلام علیکم.
وعلیکم السلام عرفہ جی.
بھائی وسیع الدین ویلکم, آر یو اسٹل ان انگلینڈ اور یو کیم بیک؟
نو نو آئی کیم بیک. جی ہاں میں آصف جی کل ہی واپس آیا ہوں.
آپ کل واپس آئے وسیع الدین, سب سے پہلے تو آئی ہوپ اٹ واز گریٹ ٹورنامنٹ, گریٹ ٹور ٹو انگلینڈ, آپ نے میچز کو انجوائے کیا. یہ جو افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو میچ ہوا, یہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ مجھے ہماری نا یہ خطے کی پرابلم ہے, اور یہ اگین آئی ایم ووکل, دس از مائی پوائنٹ آف ویو, آپ کا اس سے متفق ہونا قطن کوئی ضرورت نہیں, کہ مسلمانوں کے آپس کے اختلافات جو ہیں, آپ امیجن کیجئے گا انڈیا سے بھی شکست ہوئی مگر شکست کو گلے لگایا گیا, مگر افغانستان اور پاکستان کے میچ سے پہلے اور میچ کے بعد جو صورتحال ہوئی وہ بڑی جگ ہنسائی کی صورتحال تھی کہ وی آر نیبرز. اور جی آپ کیا کہنا ہے ماجد بھائی
اس کے متعلق
آپ بھی پوچھیں پھر میں کلیئر کرتا ہوں اس چیز.
ہاں اس کے متعلق میں نے پہلے جب کہ جیسے ہی ہمارا پروگرام شروع ہوا نا تو اس وقت میں نے اپنا جو تجزیہ تھا میرا میں نے بتایا تھا, میں ایک دفعہ اور آپ کو شارٹ کر دیتا ہوں اس کو. پہلے تو بڑا ڈیٹیل میں نے اس کے متعلق بات کی, اور یہ کہ یہ جو گیمز ہوتے نا اتنا انٹرسٹنگ گیم ہے, اتنا انٹرسٹنگ گیم ہو رہا ہے یہ پورا جو ٹورنامنٹ ہے, اور اس اسٹیج پہ جا کے پہنچا ہے یہاں پر کہ کوئی انتہا نہیں اس کی, اینڈ ایوری بڈی ہو لائکس اور لوز کرکٹ دے آر ان دیئر, ڈزنٹ میٹر کہ آپ کی ٹیم اندر ہے نہیں ہے.
ماجد بھائی آج بھی مقابلہ تھا دو ٹیموں کا, دونوں ڈراپ ٹیمیں ہیں, مگر
نہیں سری لنکا نے اپنا مقام بنا لیا, پھر ہو سکتا ہے سری لنکا بھی آ جائے اوپر, مگر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسپورٹس اور اسپیشلی جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے اس کو آپ سیاست اور ریلیجس سے نہ ملائیں, کیونکہ بعض لوگوں نے کہا جی انہوں نے اورنج کپڑے پہن لیے جو انڈیا نے,
دیٹ واز ایبسولوٹلی رانگ,
ایبسولوٹلی رانگ, ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ دیٹ, کوئی ہمیں آفیشیل اس کی خبر نہیں ملی انڈیا سے. اس کے علاوہ جہاں تک یہ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر کتنے ہزار, آپ تو اس گیم میں تھے وہاں پر,
اچھا
تو وہاں پر 25,000 کے قریب کوئی لوگ تھے وہاں پر شائقین, اور زیادہ تر کہتے ہیں کہ میجورٹی جو تھی واسٹ میجورٹی پاکستانیوں کی تھی وہاں پر.
بالکل صحیح ہے,
ٹھیک ہے نا,
80-20 کی ریشیو,
80-20 کی ریشیو تھی. اب اگر اس میں سمجھ لیں کہ 50-100 بھی آپ لگا لیں گے, اگر 100 جو افغانی تھے وہ انہوں نے آ کے وہاں پر کچھ ہنگامہ کیا یا کچھ کیا پاکستانیوں سے, that has nothing to do with پورے کے پورے افغان کو آپ یہ نہ کہتے ہیں. ایک میرے پاس کالر آئے تھے انہوں نے کہا جی آپ افغان سے امیگریشن ہی بند کر دیں ان لوگوں کا, اور پاکستان کو چاہیے کہ ان سے تعلقات خراب کر لیں, اور یہ میں نے کہا یار اتنا کچھ نہیں ہے یہ. آپ یہ دیکھیں جہاں پہ یہ گیمس ہو رہے ہیں نا انگلینڈ میں, وہاں پر روز مرہ کا یہ دستور ہے کہ جب وہاں فٹ بال, کیونکہ وہاں فٹ بال نمبر ون ہے پوری دنیا میں, تو جب وہاں فٹ بال کے میچز کے اینڈ میں اور شروع میں باقاعدہ لڑائی جھگڑے اتنے ہوتے ہیں کہ ایکسٹرا پولیس آ جاتی ہے, اور وہاں پر میں کہتا ہوں کہ بڑی بری حالات ہوتے ہیں وہاں پر, اور یہ ابھی سے نہیں.
مگر آپ کی بات, میک لانگ سٹوری شارٹ, یہ ہے کہ اس میں کمزوری ہے انگلینڈ کی گورنمنٹ کی, آرگنائزیشنز کی, ریزن بینگ کہ وہاں پر جو بیلونز ہوا میں بلند کیے گئے وہ it was a total political message,
exactly.
کہ بلوچستان کو آزاد کرو, missing persons کے بارے میں, یعنی وہی خطہ افغانستان کے پی کے اور آگے پھر بلوچستان کا علاقہ جو آ جاتا ہے ان چیزوں کو,
اس پہ پاکستان کو کمپلین کرنی چاہیے انگلینڈ,
گورنمنٹ آف پاکستان کو.
ایگزیکٹلی,
آپ لوگوں کو وہ دیکھنے کا موقع ملا تھا جس میں, اور لوگ کہتے ہیں بڑا فرسٹریٹ ہوئے تھے جب وہ بلوچستان کی سیپریٹسٹ کا پیغام ہوا میں گیا تھا.
ہاں بالکل, وہ بالکل ہوا تھا, وہ بھی ہوا تھا, अगर आप मुझसे पूछती हूँ तो मैं आपसे अपना थोड़ा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस शेयर करता चलूँ। एक हफ्ता मैं एक हफ्ता भी नहीं, तक 10 दिन मैं इंग्लैंड में रुका, मुख्तलिफ सिटीज में ट्रेवल किया, वर्ल्ड कप को भी मैचेस ग्राउंड में देखे। तो ये जो काफी कंट्रोवर्सी रही लास्ट 2 मैचेस में, इंडिया इंग्लैंड का मैच जो ऑस्ट्रेलिया भी बात करूंगा मैं, और जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच उस पर भी बात करूंगा। तो अरफाबाजी मैं ग्राउंड में मौजूद था और पाकिस्तानी क्राउड की मैं ये बात नहीं है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं आपको ये बताऊं हमने लॉर्ड्स का मैच देखा और आपको पता है लॉर्ड्स का जो मैच था वो बड़ा ही जबरदस्त मैच पाकिस्तान जीता और उसमें बहुत सारी जो है शख्सियात आई भी थी। और आपको मैं ये भी बताऊं कि ये जो वर्ल्ड कप में जो रौनक है ना अरफाबाजी, ये सिर्फ एशियन टीमों की वजह से है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं,
हम गए अफ्रीका पाकिस्तान का मैच देखने तो उसमें आई थिंक 90% पाकिस्तानी थे। लॉर्ड्स में था वो मैच, मैं टिकट भी महंगे होते हैं बट स्टिल 90% पाकिस्तानी थे, 10% में कुछ अफ्रीकन होंगे, साउथ अफ्रीकन 4-5% और 4-5% शायद लोकल लोग होंगे। इसी तरह पाकिस्तान न्यूजीलैंड के मैच में हम देखने गए बर्मिंघम, वहां पे भी 95% वहां तो पाकिस्तानी होंगे, ठीक है। इसी तरह आप इंडिया की अगर मैचेस देखें, इंडिया और इंग्लैंड का मैच कल हुआ है, इंग्लैंड का होम ग्राउंड है अरफाबाजी, लेकिन उसमें इंडियन 80% 75% इंडियन थे। तो ये जो पूरा टूर्नामेंट कामयाब हो रहा है, ये जो रौनक है टूर्नामेंट में, अगर बांग्लादेश का मैच देखें तो उसमें बांग्लादेशी होते हैं, अफगानियों का मैच है अफगानी। तो जो एशियंस आपको पता है कि बेतहाशा वहां पे लंदन में और इंग्लैंड में पूरे मौजूद है, और क्रिकेट जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर गेम है। जैसा कि माजिद भाई ने कहा कि जो फुटबॉल है इंग्लैंड का पॉपुलर गेम तो फुटबॉल है, हमें तो लगा ही नहीं कि गोरव का कोई इन्वॉल्वमेंट है वर्ल्ड कप में, यकीन जानिए ना सिटीज ना स्टाफ। जिस तरह आपको पता है जब हम जाते हैं, पीएसएल भी अभी पाकिस्तान में हुई थी, रोडों पे खिलाड़ियों के पोस्टर लगे हुए हैं और बैनर्स लगे हुए हैं, कुछ नहीं था, बिल्कुल खामोशी थी, ठीक है। तो जो वर्ल्ड कप, पहली बात तो मैं ये क्लियर करता चलूं यहाँ पे कि जो वर्ल्ड कप इतना कामयाब हो रहा है और जो पैसा भी बात आईसीसी उससे कमा रहा है, आप ये देखें कि जो ग्राउंड में होर्डिंग्स लगी हुई है वो भी एशियन मुल्कों की लगी हुई है। इंडिया ने सबसे, इंडिया की सबसे ज्यादा कंपनियों ने वहां पे इन्वेस्टमेंट की है, अपने ज्यादा पोस्टर लगाए। तो पहली बात तो ये है कि जो भी मैच एशिया का होता है इनको पता होता है कि ये मैच जो है, पुलिस को, आपने बिल्कुल सही कहा कि पुलिस को पता होना चाहिए कि ये आपस में बहुत जज्बाती शायकी है और पुलिस को इस पर बात पर बहुत अलर्ट रहना चाहिए। तो जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो आतंकवादी मैच हुआ, तो अफगानिस्तान का जो झुकाव है, कितना मैं सियासी बात नहीं करूंगा, क्रिकेट बोर्ड की बात करूंगा, वो इंडियन की तरफ झुका हुआ है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को ऑफर की थी कि आप हमारे मुल्क में आके वनडे खेलें या टेस्ट मैचेस खेलें, जिसको अफगान बोर्ड ने मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे, जिसका कोई अपेरेंटली रीजन नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, आपको याद होगा कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम जब इंटरनेशनल उसको स्टेटस मिला तो पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा श्रीलंका की मदद की थी और श्रीलंका ने इतनी टेस्ट सीरीज दी पाकिस्तान ने, क्योंकि जब नई टीम आती है तो इसको कोई सीरीज नहीं देता माजिद भाई, क्योंकि उससे पैसा आपको नहीं आता। अब अफगानिस्तान की टीम अगर जाएगी इंडिया तो कौन देखने आएगा। तो पाकिस्तान ने श्रीलंका को सपोर्ट किया और बहुत सारी सीरीज दी कि आओ खेलो और वहीं पर उनके खिलाड़ी थे, और श्रीलंका, यही वजह है कि श्रीलंकन बोर्ड के साथ सबसे क्लोज ताल्लुक आते हैं पाकिस्तान के, और वो आज भी इन हालात में भी पाकिस्तान आने को तैयार है, ठीक है। तो अफगानिस्तान उसके अपोजिट बरक्स चला, ठीक है। ये थोड़ी सियासी बात मैं नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं इसका बैकग्राउंड दे रहा हूँ आपको, ठीक है। आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान के जो है वो ताल्लुकात सही नहीं है, क्रिकेट बोर्ड पे भी सही नहीं है, वो अब हमारे प्लेयरों को आईपीएल में नहीं लेते, क्रिकेट कहीं खेलने को तैयार नहीं होते। आपको पता है इवन अभी जो पुलवामा का अटैक होता, उसके बाद इंडिया वालों ने, इंडियन बोर्ड ने रिक्वेस्ट की थी कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया जाए, मैच खेलना तो दूर की बात है, बाहर कर दिया जाए, जिसको आईसीसी ने रद्द किया, फिर उन्होंने कहा हम पाकिस्तान से मैच नहीं खेलेंगे। तो ये सारे हालात में तो अफगानिस्तान का जो झुकाव है वो इंडिया की तरफ है। फिर एक वीडियो भी आई थी, शायद आप लोगों ने देखी होगी, जब इंडिया और अफगानिस्तान का मैच खत्म हुआ तो इंडियन एंकर ने लोगों के इंटरव्यू ले रहे थे तमाशाइयों के, तो उसमें से एक अफगानी तमाशाई था, उससे जब पूछा तो उसने कहा इंडिया अफगानिस्तान भाई भाई, टारगेट इज पाकिस्तान। ये शायद आज मुझे नहीं पता, आप दोनों हजरात ने वीडियो देखी है?
मैंने बिल्कुल देखी है, मैंने देखी,
देखिए, ठीक है। तो जब से ये एक वो शुरू हो गया था कि ये दोनों जो है वो अफगानिस्तान का झुकाव जो है वो इंडिया की तरफ है, और जब ये मैच हुआ तो आपको पता है जब सोशल मीडिया पे ऐसी चीज चली जाती है और जो वहां पे तबका आया हुआ है माजिद भाई इंग्लैंड में, जो कि अफगानिस्तान का, वो इतना पढ़ा लिखा तबका वहां पे नहीं है, जो वो पढ़ा लिखा तबका जो नहीं होता वो आसानी से लोगों की बातों में आ जाता है, ठीक है। तो उन्होंने पता नहीं इस मैच को क्या समझ लिया कि ये जंग है या क्या है, उनकी जो ये जो मैं समझता हूँ नफरत कह ले पाकिस्तान से है, क्यों है इस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, जरा बात उसकी सियासत पे बात आ जाएगी, उनकी जो एक पाकिस्तान से वो चिड़ते हैं, वो समझते हैं जो पाकिस्तान में सारी, जो अफगानिस्तान का इतना बुरा हाल हुआ उसका जिम्मेदार पाकिस्तान की फौज है या आई है, तो ये मैं इस बात में बात नहीं करूंगा, लेकिन उनके अंदर एक चीज है ये, ठीक है, वो चीज जो मैच में बाहर आई है समझिए। और ये कहना कि उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि मैं पाकिस्तानी शायकीन जो है वो बहुत ही जबरदस्त अपना डिसिप्लिन उन्होंने शो किया, मैं वही बता रहा था आपको, चाहे वो लॉर्ड्स हो चाहे वो एडविस्टन हो, हमारे वो तमाशाई है, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब कोई साउथ अफ्रीका का प्लेयर चौका मारता था तो वो उसको दाद देते थे, जब उनका प्लेयर कोई 50 करता था तो हमने खड़े होकर तालियां बजाई ग्राउंड में उनके लिए, ठीक है,
दिस इज व्हाट द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इज,
स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, ठीक है बाबा जी. तो लेकिन जो कुछ हुआ लीड्स में, हेडिंग्ले लीड्स में जो हुआ, उसमें पाकिस्तानी शायकीन का कोई कसूर नहीं है. मैं ये बात खुल के बोलूंगा, क्योंकि इन लोग के अंदर एक आग भड़क रही थी अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है. फिर इनकी टीम बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रही, सारे मैच हार रही है, ठीक है. तो उसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट थे, क्या था जो भी था. उन्होंने दो काम हुए उस दिन बेसिकली. एक तो उन्होंने कुछ पाकिस्तानी शायकीन को कॉर्नर करके उसकी पिटाई की, जिसकी वीडियोज आई हैं जो आपने भी देखी होगी. एक उन्होंने काम किया कि उनके कोई तकरीबन 200-400 लोग जो थे वो ग्राउंड के बाहर खड़े हुए थे और हल्ला बोल रहे थे कि उनको स्टेडियम में आने दे जाए, और उनके पास टिकट नहीं थे.
बल्कि स्टेडियम के सामने 3-4 घर हैं, जो कि नॉर्मली जब भी यहाँ पे इंग्लैंड के मैचेस होते हैं तो वो घर कहते हैं बाकायदा अपना मशरूबात भी सर्व करते हैं, लोग वहाँ पे ठहरते भी हैं. और इन लोगों ने फ्री उनको डैमेज करने की कोशिश की, उनको दे हैड टू कॉल पुलिस. देन दिस इज व्हाट हैपेंड. और ये उस वक्त हुआ जब ये था कि अफगानिस्तान जीत रहा है, देयर वाज अ स्टेज कि पाकिस्तान लूजिंग नहज पे चला गया था. तो ये उस स्टेज पे ये वो लोग आए थे, उनके पास टिकट नहीं थी, इन्होंने उन घरों को डैमेज किया, इन्होंने बाहर से मुफ्त आने की कोशिश की. यानी पैसे की कमी कह सकते हैं, वरना मेरा नहीं ख्याल कि कोई शख्स ऐसी हरकत करेगा. ये लॉलेसनेस को प्रमोशन मिली वहां.
अरे भाजी मैं कह रहा हूँ कि इसमें ये कह देना कि ये बहुत ही अफसोसनाक है, इसमें दोनों पाकिस्तान का, मैं कहता हूँ इसमें 1% भी कसूर नहीं है. मैं इस बात को एंडोर्स करता हूँ.
एक इंडिया की साइट है जो मेरा बेटा देख के मुझे दिखा रहा था, जाहिर है मैंने ये चीज देखी, फिर उसने मुझे वो भी दिखाया कि किस तरह से वो बैलून हवा में गया, जहाज हवा में गया, जिसमें बलूचिस्तान के बारे में था, जिसमें मिसिंग पर्सन के बारे में था. मगर इंडिया की एक साइट है, हालांकि जितनी फुटेज आई है उस तमाम फुटेज में सिक्योरिटी इंटरवीन कर रही है, पाकिस्तानियों ने आगे बढ़ के नहीं मारा, मगर ये अफगान यंग ब्लड जो था, देयर वाज अ प्लेस के उन्होंने इवन सिक्योरिटी माजिद भाई उनको पकड़ रही है, उन्होंने अपने जिस्म पे झंडे बनाए हुए थे, माथे पे झंडे बांधे हुए थे, और वो सिक्योरिटी के पकड़ने पे कंट्रोल करने के बावजूद वो लोग मार रहे थे अफगानी. तो जाहिर है बरतानिया का कानून भी कैनेडा के कानून के मुताबिक बड़ा सख्त.
और यही चीज अगर पाकिस्तान में हो जाती
जी
तो वहां तो बस क्या कहते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के चिचर बच्चर कर देते उनको. अब ये इंग्लैंड में हुआ है तो हु इज समबडी हैज टू बी लायबल, समबडी हैज टू बी रिस्पांसिबल फॉर व्हाटएवर हैपन.
और वो भाई भाई आपको ये पता है कि वहां पे बड़े सख्त लॉज होते हैं, ठीक है ना.
मैं कहां रह गए सख्त लॉज.
नहीं भाई भाई, अब उनमें आपको पता है कि 5-6 लोगों को जो है वो पकड़ा है पुलिस ने, ठीक है. अब उनके खिलाफ क्या एक्शन होगा, क्या
मगर ये जो ये जो ये जो देखिए इसको टोटल पॉलिटिसाइज जो किया गया, जो जहाज गया बलूचिस्तान और मिसिंग पर्सनल के हवाले से, जहाज का हवा में बुलंद होना, दिस इज नॉट अ जोक.
सिक्योरिटी
इट इज नॉट अ जोक, इट वॉज डेफिनेटली वेरी प्लान्ड. तो
सही कह रही हैं आप.
उन लोगों को क्या सजा मिलेगी, क्या वहां पे आप रहे, गार्डियन ने बारे में इसके बारे में कुछ लिखा या नहीं लिखा, वहां के अखबारों का क्या रिस्पांस था.
नहीं यार बाबा जी, इस बारे में किसी मैंने मेरा इत्तेफाक तो नहीं हुआ पढ़ने का, शायद किसी ने लिखा हो तो मैं उसको नहीं इंडोर्स कर सकता, लेकिन मेरा ऐसा कोई इत्तेफाक नहीं हुआ. और लेकिन आपकी बाबा बात सही है कि एक जाने की जब सिक्योरिटी होती है, उसका मतलब तो है कोई हेलीकॉप्टर लाके बम फेंक दे ग्राउंड के ऊपर, ठीक है. तो सिक्योरिटी का काम है कि वो देखे कि इवन कि कोई ड्रोन चलाता है अरफाबाजी उसको पकड़ लिया जाता है, आपको पता है.
एग्जैक्टली,
यहाँ भी होता है कनाडा में, और वहाँ पे तो ड्रोन पे जब आप किसी को पकड़ सकते हैं तो आपको नहीं पता कि हेलीकॉप्टर कौन चला रहा है, उसको पकड़ना है आप जो हेलीकॉप्टर पायलट है उसको.
यहाँ पे मैं इस बात को बताना चाहती हूँ, इससे पहले भी माजिद भाई जो वहाँ की डबल डेकर बसें हैं, उन बसों के ऊपर आपको पता है कि इन्होंने बाकायदा इश्तहार लगाए गए थे, जिसमें पाकिस्तान ने किया था कि ये हमारा जाती मामलात हैं,
उसको बंद करवा दिया,
बंद करवा दिए थे. मगर राशिद भाई ने भी मुझे टेक्स्ट किया है, और राशिद भाई कहते हैं इट इज अकॉर्डिंग टू देयर लॉ. व्हाट इज अकॉर्डिंग टू देयर लॉ. वसीउद्दीन से मैं बात कर रही हूँ, वसीउद्दीन का बहुत शुक्रिया, ही इज अ स्पॉन्सर ऑफ दिस क्रिकेट सीरीज हमारे साजो आवाज के स्लॉट में. वसी सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका. बाय द वे आई वॉज लुकिंग एट यू हैड एक 4-स्टोरी का कमर्शियल प्लाजा मिसेस सागा में, और रीजनेबल प्राइसेस थी. इज इट ऑल सोल्ड और इज इट स्टिल अवेलेबल.
अच्छा, वो जो डंडास और उसके ऊपर था, मिस्टर चर्चिल के ऊपर.
जी जी
What
is available now? What is the news about this real estate at the moment?
The real estate आशा बाजी है जनाब, ने हम टॉपिक थोड़ा चेंज किया है, अच्छी बात है, हम रियल एस्टेट की बात करते हैं
मगर मैं अभी भी आया हूँ मुझे
अच्छा अच्छा नहीं नहीं आप बिल्कुल सवाल करिएगा। रियल एस्टेट आशा बाजी, जैसे कि आपको भी पता है कि दो साल पहले 2017 अप्रैल में करेक्शन आई थी, तो लास्ट ईयर रियल एस्टेट बहुत स्लो रही थी, ठीक है ना, नेगेटिविटी थी मार्केट में, लोगों का ख्याल था कि प्रॉपर्टी मजीद नीचे जाएगी, ठीक है, लेकिन इस साल हमने बहुत ज्यादा उसमें पॉजिटिविटी देखी है, मैं कहूंगा, क्योंकि देखिए हम पॉजिटिव इस तरह देखते हैं माजिद भाई, अगर मेरा बिजनेस, मेरी सेल्स, मेरे पास क्लाइंट्स है, तो इसका मतलब है कि मार्केट में एक्टिविटी ज्यादा है, आई एम बिजी, देन इट मींस रियल एस्टेट मार्केट इज बिजी, इज डूइंग गुड, ठीक है। तो मैं अगर अपनी बात करूंगा पिछले साल के मुकाबले में, मैं काफी बिजी हूँ इस साल, और ना सिर्फ मैं बल्कि और भी साथ के जो हमारे रियल्टर्स हैं, और अगर आप डेटा भी उठाएं तो सेल्स बड़ी है पिछले साल के, 2017-16 वाली बात तो नहीं है, लेकिन 18 के मुकाबले में 19 में सेल्स बहुत बड़ी है, स्पेशली अंडर मिलियन की जो प्रॉपर्टीज हैं, लाइक 5 लाख और 7-8 लाख के दरमियान जो प्रॉपर्टीज हैं, सबसे ज्यादा तेजी उनमें आता भाजी,
सही,
इवन की मल्टीपल ऑफर्स भी मैंने देखी है, मेरे अपने क्लाइंट्स के उसमें मल्टी ऑफर आ गई थी, तो मैं आपको ये बताऊं कि उसमें बहुत तेजी है, और अब लोगों का एतमाद जो है बहाल हुआ है, बैंकों ने इंटरेस्ट रेट आपको पता है कम किए, जो 3.7 तक पहुंच गए थे, अभी मेरे क्लाइंट को 3.10 का रेट मिला है 5 ईयर, ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट में कमी आई, और लोगों को ये लगा, वैसे हमारा तो ये बिलीव है कि टोरंटो की मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट जो है वो बहुत स्ट्रांग है, अब रियल एस्टेट की बात चली तो मैं लंदन में था बाजी, मैं लंदन की अगर आप प्रॉपर्टी का मैं जब देख रहा था, तो मैं तो वो हो रहा था कि यार हम लोग तो जो है वो बहुत ही कम पैसे पे करते हैं प्रॉपर्टीज के, वहां पे 2 बेडरूम के 100-100 साल पुराने अपार्टमेंट में बताऊंगा, 100-100 साल, पाकिस्तान इंग्लैंड में जो है ना आशा बाजी, 2 तरह के घर हैं, एक वर्ल्ड वॉर 2 से पहले के घर हैं और एक वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के घर हैं, तो जो बाद के घर है, जैसे कि मेरी कजन रहती है, तो मैंने उससे ऐसे पूछा कि भाई आपका घर कितना पुराना है, कहने लगी हमारा घर ज्यादा पुराना नहीं है, 1960 का है बिल्डर, ठीक है, तो 1960 का घर वहां पे नया कंसिडर किया जाता है, और हम लोगों को कैनेडा में ऐसी आदत हो गई है कि अगर 20 साल पुराना भी घर हम किसी क्लाइंट को दिखाते हैं तो कहता है यार इतना पुराने घर मुझे मत दिखाएं, मुझे नए घर दिखाएं,
आप सही कह रहे हैं,
ठीक है ना, तो मैं ये बता रहा हूँ कि लंदन तो आपको पता है पुरानी सिटी है, तो वहां पे तो बहुत पुराने घर है, लेकिन प्राइजेस भी फिर उनकी उसी तरह की है, और 80-80 साल 100-100 साल पुराने घर हार्डली आर सभा जी 1300 स्क्वायर फीट,
मगर अगर आप इसको चेंज करें, अगर आप इसको डॉलर में चेंज करें, आई बिलीव इफ इन इन अमेरिका इन कैनेडा, कैनेडा आज भी सस्ता है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज,
मैं जो सुनने वाले उनको ये बताऊंगा कि आशा भाजी यकीन जाने, मैं जब था तो मैंने वहां पे जो मेरे दोस्त थे उनको मैंने बताया कि जो हम लोग कितने बड़े घर हैं, मेरा इतना बड़ा घर है, तो वो कहने का भाई हम तो सोच नहीं सकते, तो जो लिविंग स्टैंडर्ड आशा भाजी हमारा नॉर्थ अमेरिका में, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो कैनेडा में हो, जो लोगों का है वो लोग यूरोप में तस्वर भी नहीं कर सकते, यकीन जानिए ज्यादातर घरों में एक वॉशरूम होता है पूरे घर में एक वॉशरूम होगा, ठीक है, और वो घर की कीमत क्या है 8 लाख पाउंड 7 लाख पाउंड, उन घरों की बात कर रहा हूँ मैं,
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मच चीपर कैनेडा, इट्स स्टिल मच चीपर एज कंपेयर्ड,
तो मैं अभी भी आप लोगों को ये बताता हूँ कि टोरंटो का जो मार्केट है वो स्टिल जो है वो बहुत चीपर है कंपेयर टू अदर अदर वर्ल्ड, अदर बिग सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, तो टोरंटो में आज भी हमारे डाउन टाउन में भी आप $5 लाख का आपको अपार्टमेंट मिल जाता है, जबकि ये हाल जरा कितने पास सिडनी भी जाना हुआ है,
और देखते देखते वसीउद्दीन डाउन टाउन, तो अब आप सोचिएगा आज से 3 साल पहले हम $800-900 पर स्क्वायर फुट ले सकते थे, आज डाउन टाउन 1400-1500 और 1600 पर स्क्वायर फुट पे चला गया,
जी तो मिसेस आगा में इस वक्त $850 पर स्क्वायर फीट में स्क्वायर वन के पास जो नए प्रोजेक्ट आए एक्सचेंज स्ट्रिक वगैरह, ठीक है ना, यहाँ पे ये चीजें बिक रही हैं, और आपसे बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने $600 पर स्क्वायर फीट पे भी डाउन टाउन में कॉन्डो बेचे हैं, नए कॉन्डो की बात बता रहा हूँ, ठीक है ना, तो आज वो 1200-1300 पे रहे हैं, ऑलमोस्ट डबल हो गए लगभग लास्ट 5-6 ईयर आई वुड से, तो अभी भी आप लोगों को मैं यही कहता हूँ कि देखें प्रॉपर्टी टोरंटो में या जीटीए में मैं कहूंगा आज भी बहुत सस्ती है, आज आशा बाजी हम 3-4 हजार स्क्वायर फीट का घर यहाँ पे ले लेते हैं, वहां पे मेरे ख्याल में जो बड़े बड़े मिलियनर है उनके घर भी 4-4-5-5 हजार स्क्वायर फीट के नहीं होते, तो अल्लाह ताला का, पहली बात तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम एक ऐसी कंट्री में रहते हैं आशा बाजी जहाँ पे हमारा लिविंग स्टैंडर्ड, हम लोगों ने माशाल्लाह गाड़ियां सबने अच्छी रखी हुई है, वहां पे लोगों के पास गाड़ियां भी बहुत, क्योंकि लंदन का एक दूसरा मसला ट्रैफिक का भी है, तो लंदन का जो पूरा शहर है, लंदन भी क्या बल्कि पूरे इंग्लैंड की मैं बात करूँ आशा बाजी, वो पूरा ट्रेन पे चल रहा है, ठीक है, हम जैसे लोग जो यहाँ पे 10-10 साल में, मेरे ख्याल में मुझे नहीं पड़ता मैं 10 साल में कभी एक दफा भी ट्रेन में बैठा हूँ या मैं बस में बैठा हूँ, पूरे वक्त मैं 10 दिन जो है वो ट्रेन में और उसमें घूम रहा था वहाँ पे, ठीक है, ना सिर्फ मैं बल्कि हर आदमी जो है लंदन में ट्रैफिक की वजह से जो है वो ट्रेन में घूम रहा होता है, ठीक है, तो वहाँ का जो पूरा